श्लोक क्रमांक 21, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। कुछ शब्दों का अर्थ आप स्पष्ट देख रहे हैं। त्रिविधम मतलब तीन प्रकार के, नरकस्येदम, इदम नरकस्य, नरकस्य इदम, द्वारम, ये तीन जो हैं ये नरक के द्वार हैं। और नाशनम आत्मनः मतलब क्या हुआ, आत्मा का नाश करते हैं व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार के पद से एकदम च्युत हो जाता है, समझ ही नहीं पाता है कि वो है कौन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि जब व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगता है तो उसकी भावना और बढ़ जाती है कि वह शरीर है। पुंसा स्त्रिय मैथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अथो क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस मोहोयम अहम ममेति। स्पेशली अगर स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है तो उससे हृदय ग्रंथि और टाइट हो जाती, और आप सुनते भी हैं कि भागवत सुनने से हृदय ग्रंथि कटती है, विद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो मिथ्यांकार है। लेकिन इस क्रिया में लगने से हमारी चेतना और बाइंड हो जाती कि मैं शरीर हूं। और क्या होता है, शरीर के जो लोग हैं, शरीर संबंधित लोग हैं, वो मेरे हैं और ये संपत्ति सब कुछ मेरी है, इसको मैं रक्षा करूंगा, इसी में चित्त लगा रहता है। अनेक चित्त विभ्रांत, याद आ रहा है हमने गीता में चर्चा किया था। तो इसीलिए वहां बोल रहे हैं कि इस प्रकार से भोग में अगर कोई व्यक्ति लगता है, नाशनम आत्मना। काम, कौन से तीन दौर का नाम क्या है, काम क्रोध तथा लोभ। काम का अर्थ है भोग की इच्छा करना, और जब वो भोग की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसको और प्राप्त करने की लालसा होती, इसे लोभ कहते, ठीक है। और इस कारण से एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसको त्यागना चाहिए। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आप ये प्रभु जी त्याग कैसे दें, काम तो उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, आप उनकी बातें सुनना छोड़ दीजिए। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोले अभी कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तो आपने सुना कि वो पिक्चर देखने चलना है, जरूरी है उसकी बात माने, ये बात समझ में आ रही है, बहुत गंभीर बात है। आपको अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत लाभ होगा। ऐसे ही हमारे मन में जो काम मित्र है, काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, मुख्य बात है काम, तो कहेगा कि ये इच्छा पूर्ण करना, वो पहले के संस्कार के कारण है, ये इच्छा कर लो, ये यहां जाओ, ये करो। लेकिन हम इसको विवेक को सहते हैं, किस आधार पर, शास्त्र के आधार पर, नहीं ये नहीं करना मेरे को, ये इच्छा नहीं मेरे लिए, ये बात समझ में आ रही है। और इस बात को भगवान कहते हैं, काम क्रोध उद्भवम वेगम संयुक्त सुखी दरा, जो इस काम क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वही व्यक्ति सुखी होता है। न काम काम ही आपूर्य मारणा मचल प्रतिष्ठम, समझ रहे हैं, इस श्लोक को मैं थोड़ा रुक करके समझा रहा हूं। आपूर्य मारणा अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत, इसका समझते हैं, समुद्र में जैसे बहुत सारी नदियां गिर रही हैं लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, ऐसे अनादि काल से हमने भोग किया है तो भोग की इच्छाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन उसमें से प्रभावित ना होकर के हम भगवान की भक्ति में स्थिर रहे। ऐसा ही व्यक्ति क्या है, सशांति आपनोति, ऐसा ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, जो काम इच्छाओं के पीछे लगा है कि आज यहां खाने को मिलेगा, यहां होगा, वहां होगा, तो फिर व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जिभेर लालसा इति उति धाय कृष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। महाप्रभु नहीं ये बोलते हैं, जगदानंद पंडित बोलते हैं प्रेम व्यवर्थ में, कि जीभ की लालसा मेन बात है, काम जो है जीभ पे रहता है, ये खाना है, वो खाना है, ये जाना है, वहां जाना है। प्रभुपाद, मैं प्रसादम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुख्य रूप से हम बात बोल रहे हैं जो प्रसाद नहीं खाते हैं, सारी चीजें उसकी वजह से पेट की सेवा में लगा रहता है, फिर जननेंद्रियों की सेवा में लगा रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति काम कामी होता है तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाता। हाँ बोलिए।
अगर कोई स्वादिष्ट प्रसाद के लिए भी इधर उधर भागता है,
देखिए उसकी चेतना का लेवल क्या है। कोई नया भक्त है और अच्छा प्रसाद खाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपने आप ही धीरे धीरे करके हृदय से बहुत अच्छा प्रसाद खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। नाम जप करता रहे, भक्ति करता रहे, एक इंद्रिय तृप्ति है जो भक्त के लिए अलाउड है। हाँ, ये प्रभुपाद ने बताया है कि ब्रह्मचारियों को मंदिर में ही प्रसाद खाना चाहिए, हमको ये नियम नहीं बनाना चाहिए। प्रभुपाद का मैं कोटेशन दिखाऊंगा, पहले था कि गुरु जी जब बोलेंगे तभी खाओगे, और कहे या फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं भाई कुछ लोग वो क्या कहते हैं उसको मांग के खाते, नहीं ब्रज में क्या बोलते हैं उसको मधुकरी, तो कह रहे मधुकरी घर के खाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर का प्रसाद खा के संतुष्ट हो जाए। ये नहीं कि यहां अच्छा मिलता है वहां अच्छा मिलता है वहां भागेगा तो फिर उचित नहीं। हमने चर्चा किया था इसके बारे में ना, उदरोपस्थ वेगम के बारे में, जिह्वा वेगम के बारे में, कि ये नहीं कि वहां अच्छा खाना मिल रहा है वहां अच्छा खाना मिल रहा है तो वहां भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, फिर आपका मन जो है उसी में फंसा रहेगा। मन को जब भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जो भगवान की कृपा से मिल गया प्लेट में आएगा उसे खा के संतुष्ट रहेंगे। भगवान का प्रसाद होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, तो हम लोग जरा पढ़ लेते हैं पहले आचार्य जी क्या बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस आश्रित वृत्ति के बारे में सुनता है जो नरक की ओर लेके जाती है तो व्हाट शुड मैन डू। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति इस आश्रित प्रवृत्ति से बचना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो यह श्लोक इसका उत्तर देता है कि उसको काम क्रोध और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि यही आश्रित प्रवृत्ति के जन्म जन्म देने वाले लोग हैं, ठीक है। ओके, तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेंगे, अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे।
यहां पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है।
एक मिनट, काम क्रोध और लोभ, और उसमें भी मूलभूत है काम, काम ही आसुरी जीवन को आरंभ करता है, और भगवान इसीलिए बोल रहे हैं, आपको अगर याद हो तीसरे अध्याय जहां तक बोलते हैं कि काम रूपी शत्रु जो है उसको जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, मारो उसको। जही का मतलब होता है मारो, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम, ये भावना से लड़ना, जैसे आप कमांडो की तरह लड़ रहे ना, गोली मारनी है ऐसा करके। आप कहो कि थोड़ा मैं संतुष्ट कर लूंगा, थोड़ा संतुष्ट कर लूंगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। हमने सुना था काम आशक्त दुष्पूरम, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, गोली मारनी है तब उसको, तब वो मरेगा। और जब असुर जो है या कोई शत्रु है जो वीक होता है तभी से पीस देना चाहिए, ऐसे भावना रहनी चाहिए, युद्ध करने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सरेंडर कर देंगे हाँ ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता है, वो चीज पड़ी रहेगी जब तक हम निकालेंगे नहीं अपने हृदय से, और ये हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और भगवान क्या बोलते हैं उसमें, बड़ा सिंपल सोल्यूशन कहते हैं, इसलिए पहले अपनी इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों के ही द्वारा इनपुट मन में जाता है तो उसको संयमित करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसलिए उसको बढ़ने नहीं जाएगा, जैसे आप जानते हो जामिल अच्छा खासा ब्राह्मण था लेकिन एक काम का दृश्य देखा तो उसका वर वहीं से आश्रित जीवन जो है आरंभ हो गया। पूर्व रवा महाराज क्या बोलते हैं, हमारे दशरथी महाराज बताएंगे। यस,
लेकिन मैं इस काम के कारण मैंने अपना इतना अच्छा जीवन जो मानव जीवन था उसे मैंने हरि विमुख कर दिया, और वो बहुत धिक्कारते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने हजारों साल तक भोग किया और तभी मुझे जो है तृप्ति नहीं हुई।
यस, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कि अब हम हजारों जन्मों तक एक्सपीरियंस करें, सुन करके समझ लेना चाहिए, ठीक है। ओके, पढ़िए।
मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है।
एक चीज और बताना चाहता हूं कि चर्चा हो रही है, हरि नाम धरे को तो बल, भक्ति विनोद ठाकुर जी संबंध में बोलते हैं बहुत सुंदर इस सॉन्ग में, वो कहते हैं कि मेरा हृदय जो है वो एक रेगिस्तान की तरह है जो इस कामाग्नि से लगातार तप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का नाम कानों के द्वारा प्रवेश करके मेरे हृदय में वर्षा करता है ना। रेगिस्तान कितना भी गर्म हो कुछ हो, जब वर्षा होने लग जाएगी तो काम अग्नि समाप्त हो जाती है। ऐसे ही भगवान के नाम जब हम करते हैं सुनते हैं तो धीरे धीरे करके काम अग्नि शमन हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है, ऐसा नहीं कि आप अपनी शक्ति से त्याग सकते हो इनको, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो भगवान के नाम के द्वारा मिलती है। यस,
जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती।
इस पर और विचार करना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं, हर व्यक्ति जानता है कि वो कमजोर कहां पे, ठीक है। जैसे क्रिकेट देखने में कोई रुचि नहीं मेरी, अब किसी भक्ति की क्रिकेट में बहुत रुचि हो सकती है, उसके लिए वो स्त्री से भी अधिक आकर्षण हो सकता है, पागल होते हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे परिवेश में चले गए जहां क्रिकेट का सीन आ रहा है तो क्रिकेट देखने लग जाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक भक्त है, मेरे से भी सीनियर थे, वो घर चले गए 15 दिन के लिए, तो मुझे खुद बोले आकर कि मैं भारत को जिताने के लिए हरे कृष्णा करने लग गया। अब देख रहे, सब भूल गया, अन्य अविनाशिता शून्यम ज्ञान, सारा ज्ञान सारी भक्ति वो ढक गई, आवृत हो गई। आपको, आप कभी करेंगे ऐसा बताइए?
अपने मंदिर में भी है,
आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि उसका माया के प्रति एक विशिष्ट आकर्षण है, वो क्या है। और कृपया अपने आप को ऐसी स्थिति में मत डालिए और हिम्मत सोचना कि आप मुक्त पुरुष हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी सुंदर स्त्री के, अभी काम की बात आ रही है तो थोड़ा कठोर ही बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को एक सुंदर स्त्री के संग अकेले में रहकर यह सोचना नहीं चाहिए कि वह मुक्त पुरुष है। नारद मुनि नहीं है हम लोग, समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी हम लोग नहीं है, श्रील भक्तिसिंह ठाकुर जी हम नहीं है, ये विचार कर लेना चाहिए। तो ये सब, ये तो है, स्त्री के प्रति आकर्षण तो है ही, और किसी वस्तु के प्रति अगर आपका आकर्षण, हम सबका आकर्षण है, और अगर हम उसकी वजह से, और गंभीर बात, उसकी वजह से हम गिरे हैं पहले, तो ऐसी परिस्थिति में ना रखना, ये हमारा दायित्व है भैया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिसको क्रिकेट के प्रति आकर्षण है उसको ऐसी अवस्था में नहीं जाना चाहिए जहां क्रिकेट की वार्ता हो रही है, क्रिकेट के दृश्य दिखाए जा रहे हो। मैं हल्के शब्द यूज कर रहा हूं, इसके बाकी अर्थ आप समझते हैं। तो अपनी भवबंधन से मुक्ति के दायित्व मेरा है, नहीं, इसलिए देख लेना चाहिए कि भाई किसी चीज के प्रति मेरे को अगर गड़बड़ है, आकर्षण है, तो उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। मैंने एक बार ये, और उस पर राधा रमण महाराज बोल रहे थे कि हमें अपने मन को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा महाराज क्या मतलब है? तो बोले देखिए, दिल्ली में कहीं शादी हो रही है किसी कांग्रेगेशन डिवोटी की, तो आपको बुलाया गया तो आप कहेंगे अरे अब तो मैं ब्रह्मचारी रह गया बहुत साल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है मन पे विश्वास करना, मरते दम तक हमें मन पे विश्वास नहीं करना। गीता में बोलते हैं प्राक शरीर विमोक्षणार्थ, प्राक मतलब पहले, शरीर विमोक्षणार्थ, शरीर के छोड़ते समय तक आपको विश्वास नहीं करना मन के ऊपर। मन पे विश्वास किया तो धोखा देगा ही, मलिन मन की हर बात बेकार है। महाराज बोल रहे थे हरि नाम ही सार है, बहुत अच्छा है। तो कहने का अर्थ यह है कि मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और उसके बारे में बाकी बातें मैं आपको क्लास के बाद में बताने वाला हूं, तो इसलिए और इस संबंध में कुछ बोलना चाहते हैं। अगर इन द्वारों में हम घुस गए, द्वारों से बाहर निकले, तो फिर मुक्ति की संभावना नहीं रहती। देखिए वही वाली बात है, रघुकुल का मन कहीं जाता नहीं, दुष्यंत महाराज के बारे में बोले कि दुष्यंत और हमें बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी भी बोले कि भाई 20 स्त्रियां भी नग्न होंगी मुझे को, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो इतना परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी या जैसे नारद मुनि के यादव को अपने आश्रम में रखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी किसी स्त्री को आश्रम में रख लेंगे आश्रय देने के लिए। यस, वी शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स। जैसे कि एक बार एक भक्त से कहे कि माता जी ने उनको बोला कि आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो कहते हैं एक साल आप भजन करिए उसके बाद हम देखेंगे। तो वो सोचे कि एक साल के भजन के बाद उनका मन परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ। तो उनके गुरु महाराज को मालूम चला, तो बोले कि भाई आपने ऐसा बात क्यों बोली उनको कि एक साल भजन करो फिर शादी करूंगा। तो बोले मैं सोच रहा था कि हरिदास ठाकुर जी जैसे उस वेश्या को उधार किए, तो कहते हैं आप हरिदास ठाकुर हैं। तो जो हरिदास ठाकुर जी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। एक और बात ध्यान रखना चाहिए, बहुत गंभीर बातें हैं। कभी कभी दिवामृत महाराज बता रहे थे कि कभी कभी कुछ भक्त लोग कहते हैं हम माया के कैंप में घुस करके प्रचार करेंगे, और फिर क्या होता है वही खींच लिए जाते हैं। जैसे कबड्डी हो रहा हो, तो अगर मैं टिंगड़िया हूं, टिंगड़िया समझना एकदम पत्ता दुबला हूं, तो बेहतर है कि हम अपने खाने में रहें, और पता लगा उधर गए तो उधर ही हमको घपच लेंगे। और प्रभुपाद जी जैसे पहलवान हैं तो जाएंगे, हाँ चलो आओ बस स्पर्श करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और छू करके वापस लेके आ जाएंगे।
बोलना ही नहीं चाहिए कि मैं
कभी नहीं सोचना चाहिए कि माया को मैं जीत सकता हूँ। यहाँ तक कि महाराज बता रहे थे, भक्ति समझ महाराज कह रहे थे, एक भक्त थे वो बोले माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और बाद में माया ने उनका बहुत बहुत कुछ बिगाड़ दिया। प्रभुपाद जी बोले कि मेरे शिष्यों को संगीत दिक्कत है कि वो माया से घबराते नहीं। एक हेल्दी फियर होना चाहिए, कि हमेशा भक्त को होना चाहिए कि मेरा कभी भी मैं पतन हो सकता है, मेरे भोग की वासना हमेशा रहती है। तो इसलिए भक्तों को संग में रहे, और भक्तों के संग में रहते हुए भी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी
है।
माइक पर हाँ, माया से बचा ले भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये हमें जो भी पहली चीज ये देखनी है कि अपने शत्रु को खाना मत दीजिए। एक उदाहरण और है, जर्मनी को रशिया ने कैसे हराया था पता है? जर्मनी के जो सेनाएं थी वो अंदर चली गई रशिया में, तो उन्हें पीछे से उनकी सप्लाई काट दी, खाना नहीं मिला उनको। तो खाना बंद करेंगे तब ये शत्रु का मुगा। एक और उदाहरण दिया जा रहा है इस पे कि एक कुत्ता है, वो जंगली कुत्ता है, और वो है आपने उसे पकड़ लिया, तो वो ऐसे शेर का उदाहरण दिया जा रहा था। तो शेर है ना, शेर होता है, तो उसे खूब क्या कहते हैं मतलब मांस खाने की इच्छा है। तो आप उसको अगर पिंजरे में डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि मऊ मऊ करने लग जाएगा, मारेगा सर ऐसे ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो उसी प्रकार से हमने काम की इच्छाओं को जन्म जन्मांतर पोसा है, अब हम जब मना करेंगे तो वो रंग दिखाएगा, क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे चाहिए। तो भक्त तो परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है, उस सहन कर लीजिए उसके बाद। और काम की तृप्ति या थोड़ी भौतिक इच्छा की तृप्ति ऐसे कर सकते हैं कि भगवान का प्रसाद खा लो। अब मान लो बहुत सब बोलते हैं भक्त की बहुत भोग की वासना की बात नहीं, उस वासना को भगवान के प्रसाद में टारगेट करो, खाओ जम के कोई दिक्कत नहीं, और सेवा करो, काम कृष्ण का कर्मार्पणे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो रस चाहिए ना। तो भगवान का प्रसाद खाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके जब आगे प्रगति करेगा अपने आप ही वो समझ जाएगा इतना अधिक खाना मेरे लिए उचित नहीं है, इससे मेरी इंद्र सहमत नहीं हो पाती। तो इसलिए कहने का अर्थ यह है कि पहला चीज हमें देखना है इंद्रियों का संयम, और जो मन बोल रहा है उसके अनुसार नहीं चलना, शास्त्र के अनुसार चलना है। हम यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।